انا سے شانت ہوں جن کے گنوں کے گان میں ارمان مہان دن چلے ہمارے دھیان سمے سار پرماگم کی 39 سے 43 تک کی گاتھاؤں پر کل اپن نے چرچا کی تھی. آج ہم آتم چھاتی کو پڑھیں گے. اس میں دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ وہ 8 باتیں جو کل بتائی تھیں کہ جنہیں اجانی جن جیو کہتے ہیں وہ تو ویسی کی ویسی ہی ہیں اور انہیں ان اجانیوں کے پکش کو پرستت کیا گیا ہے آتم کھیاتی ٹیکا میں, اور سب نے ایک رائے سے ایک ہی یکتی دی ہے. جو کہتے ہیں کہ ہمیں کرم جیو ہیں تو وہ کہتے ہیں کرموں سے بھن ہمیں جیو الگ دکھائی نہیں دیتا ہے, اس لیے کرم ہی جیو ہیں. جو نو کرم مانے شریر کو جیو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں شریر کے علاوہ کوئی آتما دکھائی نہیں دیتا ہے, اس لیے شریر ہی آتما ہے. ہر ایک کا ایک ہی ترک ہے کہ ہمیں اس سے بھن آتما دکھائی نہیں دیتا. اب ان کو جو چیز دکھائی دیتی ہے تو ان نے اسی کو آتما مان لیا. یہ اسٹائل ہے. دیکھو ہم پڑھیں گے 8 کو ایک ساتھ تو آپ کو یہ بات اس میں دیکھنے میں آئے گی کہ ہر ایک یہی بات کہہ رہا ہے کیا کہ ہمیں اس سے بھن کوئی جیو دکھائی نہیں دیتا ہے, اس لیے ہم تو اسی کو جیو مانتے ہیں. پڑھو پیج نمبر 97. اس لوک میں آتما کا اسادھارن لکشن نہ جاننے کے کارن نپنسکتا سے پرسارت ہینتا سے اتینت بمون ہوتے ہوئے تاتوک آتما کو نہ جاننے والے بہت سے اجانی جن انیک پرکار سے پر کو ہی آتما کہتے ہیں بکتے ہیں. ان میں کچھ مکھ اس پرکار ہیں. کل جو متاس کی دشٹی سے برنی جی کے آدھار پر 8 متوں کی اپن نے چرچا کی تھی تو ایسی چرچا نہ تو مول گاتھاؤں میں ہے نہ امرت چندر کی ٹیکا میں ہے نہ جیسین کی ٹیکا میں ہے. جیتن جی چھابڑا نے ضرور تھوڑے سنکیت ماتر کیے ہیں اور برنی جی نے وہ نکال کے بتائے. یہ ہمارے پاس پورا اتہاس ہو گیا. یہ کہہ کر کے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ امرت چندر جے سین ان نے جو بات نہیں کہی اس کو برنی جی کہہ کر اور مفت میں یہ ایک نیا جھگڑا کرتے ہیں, کیونکہ جن ان متیوں کے نام لیتے ہیں نا وہ مفت میں ہی شترو بنتے ہیں, اور آج کے زمانے میں ان کی چرچا کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتی. اپنے جو سادھرمی بھائی ہیں ان کی بھی تھوڑی بہت چرچا آ جائے تو وہ بھی ہمارے لیے اشانتی کا کارن بن جاتی ہے. پر ہم یہیں بیٹھے بیٹھے بھی کوئی جو بالکل اپنے ہیں ان کو بھی کچھ ایسا لگ جائے کہ یہ میرے ورودھ پڑ رہی ہے بات تو ابھی جھگڑا ہو جاتا ہے. تب جن کا وشال بہومت ہے ان کے اس دیش میں بیٹھ کر وہ چرچا سے کوئی لابھ نہیں ہے. لیکن انہوں نے کی تو نیائے شاستر میں ایسی پرمپرا تھی تو وہ انہوں نے کی ہے. ابھی وہ نیائے شاستر کی پرمپرا آج نہیں چل سکتی. موکش مہا پرکاشک میں بھی 5 ادھیائے ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کھنڈن منڈن کیا ہے اس طریقے سے آپ آج کھنڈن منڈن کرنے لگ جائیں گے تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. لیکن یہ مرم کی بات یہ ہے اس میں کہ वे आठ प्रकार की जो मान्यताएं हैं वो हम जैनियों में ही किसी न किसी रूप में पाई जाती है। आपने समय साध में पढ़ा होगा सांख्य मतान आई शिष्य कहता है, बौद्ध मतान आई शिष्य कहता है। तो सांख्य मतान आई है तो तुम्हारा शिष्य क्यों होगा? वो तो किसी सांख्य मत के गुरु का शिष्य होगा। बौद्ध मतान आई कोई शिष्य होगा तो तुम्हारा शिष्य क्यों होगा? तो सीधा तो वो उन मत वाला नहीं होता है, कहता तो अपने को दिगंबर जैन नहीं है, मानता तो अपने को श्यादवादी ही है, क्यों? लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से उसका पक्ष एक तरफ पड़ा रहता है। जैसे अपना श्यादवाद ये है ना कि आत्मा स्वतः प्रकाशक है, अब किसी का पक्ष पड़ा रहता है कि नहीं नहीं बताओ, क्योंकि आत्मा को ही जानता है ना। अब कहता है तो यही है कि हम अरहंत भगवान के भगत हैं, हम पूज्य गुरुदेव श्री के भगत हैं, हम कुंद कुंद के भगत हैं, सब यही कहता है। उधर का थोड़ा पक्ष पड़ा रहता है। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं हमें तो उन्हें समझाना है, हमको उन सांख्यों को जाके नहीं समझाना है, ना उनसे कोई बात हमारी बात पार पड़ने वाली है, ना वो हमारे पास आने वाले हैं, पर हम आपके पास जाने वाले हैं। जब भगवान महावीर का 2500वां निर्माण वर्ष आया था तब दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर समाज, इन सब में एकता करने की एक बहुत वातावरण चला था। मैं थोड़ी बात आपको बता दूं जानकारी के लिए कि श्वेतांबरों में तीन ग्रुप हैं। एक तो मूल मंदिर मार्गी जिन्हें बोलते हैं, उन्हें देहरावासी भी बोलते हैं। गुजरात में देहरा बोलते हैं ना मंदिर को, इसलिए वहां देहरावासी बोलते हैं, अपने आप से मंदिर मार्गी बोलते हैं। उनके यहां मंदिर होते हैं, मूर्तियां होती हैं, और वे कोई मुंह पट्टी मट्टी नहीं लगाते, कपड़े पहनते हैं लेकिन मुंह पट्टी नहीं लगाते। फिर उनमें से आज से 500 वर्ष पहले एक लोकाशाय हुए, उन्होंने स्थानकवासी संप्रदाय चलाया और वो मुंह पट्टी बांधते हैं। वो स्थानकवासी संप्रदाय ऐसा है कि वो मंदिर नहीं बनाते, स्थानक बनाते। स्थानक माने साधु संतों को ठहरने की जगह, अपने धर्मशाला टाइप को बोलते हैं ना, और वहां श्रावक भी आते हैं और वो गुरु उन्हें समझाते हैं, वो समझते करते हैं, माने धर्म के स्थान। स्थानक माने धर्म के स्थान, अरे वहां भगवान नहीं है, मूर्तियां नहीं है, सब जगह जगह स्थानक उनके बने हुए हैं, वे स्थानकवासी कहलाते हैं। और उन्होंने जो पट्टी बांधी उसके बाद टोडरमल जी के जमाने में लगभग 200 वर्ष बाद एक भिक्षु नाम के आचार्य हुए कहीं राजस्थान में, और उन्होंने श्वेतांबर तेरा पंथ चलाया। श्वेतांबरों में तेरा पंथ इसलिए बोलता हूँ श्वेतांबर तेरा पंथ क्योंकि दिगंबरों में भी एक तेरा पंथ है ना। और वो जो आचार्य तुलसी जिसके 9वें आचार्य थे, महाप्रज 10वें आचार्य थे, और अभी जो महाश्रवण है वे 11वें आचार्य हैं, पहले भिक्षु आचार्य थे, तो उन्होंने वे तेरा पंथ कहते हैं। अब इन दोनों की जो पट्टी है उनमें ये अंतर है कि वो तो ऐसी पट्टी बांधते हैं स्थानकवासी कि ऊपर से उसमें डोरा लगा होता है और फिर ऐसी लगी रहती है, समझे, नीचे को लटकती रहती है, जरूरत पड़े तो ऐसा खोल के और वो कर लेते हैं साथ में आप। और जो ये तेरापंथी हैं वे उसको ऐसा ऐसी पट्टी बांधते हैं कि ऐसा लगा करके ऐसी होती है उनकी, और नीचे ऊपर दोनों तरफ डोरा होता है और ऐसी बांध देते हैं। ये उनकी पहचान का चिन्ह है, समझ लो तीर्थंकरों के चिन्ह है ना। तो ये तीन संप्रदाय उनमें है। थोड़ी सी जानकारी वैसे ही दी है क्योंकि लोगों को होती नहीं है जानकारी, इसलिए मैंने बात करी थोड़ी। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो संप्रदाय हैं जितने भी मान लो जैनों में, उन संप्रदायों के प्रति भी सब में कुछ न कुछ वो एक तरफ का झुकाव होता है ना, तो उसी की वजह से ये संप्रदाय और पंथ खड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि हम कोई बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहे, अपने मुमुक्षुओं में, आप समझ लो पूरे दिगंबरों की बात भी नहीं करता मैं, ऐसी मान्यता वाले जीव मिलेंगे। पर आचार्य देव उनके प्रति ये कह रहे हैं, यानी हमें में से बैठे हुए हैं, ऐसा समझ लेना, हमको ही पता नहीं है, लेकिन एक तरफ हमारा ढलान ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि लोग कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं क्या रखा है पूजा पाठ में भक्ति में, ऐसा कहने वाले ना, तो वे निश्चय के एकांत वाले भी अपन में ही होते हैं और व्यवहार के एकांत वाले भी अपन में ही होते हैं, तो हमें दूसरों में खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो यहां पर उन्होंने ये बात कही जो बहुत कठोर शब्दों का उपयोग किया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी दूसरों पर लगाने की इन्हें कोशिश नहीं करना। क्या लगा नपुंसक, एक किताब यहां डुबती नहीं है, छोटी किताब नहीं रख सकते थे, पर यहां पर नीचे पड़ी मिली थी मुझे, मालूम फोन रख के गया था, यहां पैरों के नीचे पड़ी थी, मैंने अभी उठाई है। देखो तो मैं आपसे कह रहा था क्या कि बहुत से कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। देखो इसमें बहुत से दुर्बुद्धि लिखा ना, मिथ्या दृष्टि, वे परमार्थवादी सत्यार्थवादी सत्य भूलने वाले नहीं हैं। यही चल रहा ना टीका में नीचे, इस लोक में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण, आत्मा का असाधारण माने वास्तविक जो दूसरे में नहीं पाया जाए, नपुंसकता से, पुरुषार्थहीनता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए, देखो तात्विक आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को ही आत्मा कहते हैं, बकते हैं। एक कहते हैं ये नहीं है, ऊपर तो बकते ही है लिखा है, मैं तो उसे सरल भाषा करके थोड़ा कहते हैं कह दिया है। ऊपर देखो पड़ा क्या पड़ा, जलपंती पिलपंती प्रलपंती माने प्रलाप करते हैं, जैसे आधे पागल लोग बकते हैं ना, ऐसे प्रलाप ऐसा शब्द पड़ा है संस्कृत में। तो क्लीवत्तेन अत्यंत विमूढ़ा, नपुंसक होने के कारण अत्यंत मूर्ख हैं, है ना। आत्मा को नहीं जानने वाले बहुत से लोग पर को ही आत्मा मानते हैं, ऐसा कहते हैं, समझे ना। अब वो उनमें जो आठ प्रकार के बताए थे कल, वहां से दिमाग हटा दो कि ये अन्न मत की बात है, ये इसलिए क्यों कि ना हमें झगड़े में पड़ना है, और दूसरी बात ये है कि हमें अपना कल्याण करना है, इसके लिए हम समय सार पड़ रहे हैं, है? फिर हम कहें भाई तो उनकी बात है, हमारी तो है ही नहीं, तो फिर हम इसको दूसरों की माथे पर टालते रहेंगे। हमें अपनी तरफ देखेंगे, वो दोष हमें होए तो वो दोष हमें अपने में से निकालना है। मैं पढ़ता हूं, इसमें एक ही तर्क आपको मिलेगा, ध्यान से सुनना। इस कोई तो ऐसा कहते हैं कि नैसर्गिक राग देश द्वारा मलिन अध्यवसान ही जीव हैं, क्योंकि जिस प्रकार कालेपन से भिन्न कोई कोयला दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता, उससे भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता। ये आठ बार लिखेंगे, संस्कृत में भी यही है सब, है ना। लेकिन उदाहरण उनने एक की जगह आठ लिख दिए। अब पहला कौन सा उदाहरण है, जैसे कालेपन के से भिन्न कोई कोयला नहीं है, तो वो जो काला है माने कोयला है, सुरम देखा ना पहला उदाहरण। ऐसे ही अध्यवसान भावों से भिन्न कोई जीव हमें दिखाई नहीं देता, तो कहते जब हमें जो विकल्प उठ रहा है ना, ये मैं हूं ये मैं हूं ये मैं हूं, तो यही तो मैं हूं, ये विकल्प किसको उठ रहे हैं, ये विकल्प ही मैं हूं, ऐसा वो बोलते हैं। देखो और दूसरे कोई कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है, और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है। अपन आत्मा को भी ऐसे ही कहते हैं ना, लेकिन उसे सुनो, ऐसे संसरण रूप जो क्रिया है, हम अनाधिकार से घूम रहे हैं ना, ये घूमने रूप क्रिया है, उस क्रीड़ा रूप से करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योंकि कर्म से भिन्न हमें कोई जीव दिखाई नहीं देता। बस वही अंत में वही आ गई बात, उसने कहा था अदृशान जीव है, इसने कह दिया कर्म जीव है, क्योंकि हमें कर्म से भिन्न कोई अलग नहीं दिखाई देता। कोई कहते हैं कि तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होते हुए दुरंत राग रूप रस से भरे हुए अब्दवसानों की संतति ही जीव है, लगातार ये राग देश होते रहते हैं, ऐसी मान्यता होती रहती है, यही जीव है, क्योंकि इससे भिन्न हमें कोई जीव दिखाई नहीं देता। तो तर्क वो ये कही है कि इससे भिन्न हमें कोई जीव दिखाई नहीं देता, तो ये तर्क अनुभव का तर्क है कि हमें दिखाई नहीं देता। बस उसने अपनी बात कह दी, हमें दिखाई नहीं दिया, हमें जो दिखाई नहीं दिया तो हमने मान लिया कि नहीं है। अब सूरज दिन में 12 बजे तुम्हें दिखाई नहीं दे तो तुम मान लो कि भाई सूरज नहीं है, ऐसा तर्क है ये, है ना। इसका उत्तर कितना सीधा सरल है कि सूरज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा दिन के 12 बजे और सबको दिखाई दे रहा, इससे सूरज नहीं है ये बात सिद्ध होती है कि तुम अंधे हो, ये बात सिद्ध होती है। आप समझ नहीं ना, तो कहते तर्क तो ऐसा है कि हमें भिन्न दिखाई नहीं देता, तो तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम्हें आत्मा से अनभिज्ञ हो, तुम आत्मा को नहीं जानते, ये सिद्ध हुआ। इससे आत्मा नहीं है ये कैसे सिद्ध हुआ, लेकिन लगा रहे अज्ञानी का तर्क, अज्ञानी की तरफ से तर्क है ना। कोई कहता है कि नई पुरानी अवस्था आदि भाव से प्रवर्तमान नो कर्म माने शरीर ही जीव है, क्योंकि शरीर से अन्न अलग कोई हमें जीव दिखाई नहीं देता, एक ही तर्क है ना। कोई कहते हैं कि समस्त जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म का विपाक कर्म का उदय ही जीव है, क्योंकि सुभाषुभ भाव से अन्न हमें कोई जीव अलग दिखाई नहीं देता, हमें तो सुभाषुभ भाव देखते हैं, अच्छा करने का भाव बुरा करने का भाव चौबीस घंटा में यही दिखते हैं। कोई कहते हैं साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदत्व गुणों से भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव माने विपाक ये अनुभव है ना चौथा जीव है, क्योंकि सुख दुख से अन्न अलग कोई जीव हमें दिखाई नहीं देता, बस सुख दुख ही जीव है। कोई कहते हैं कि श्रीखंड की भांति उभय रूप मिले हुए आत्मा और कर्म, श्रीखंड जानते हो क्या होता है, ये जो है संस्कृत में से शिखर नहीं बोलते हैं, दही और गुड़, अब आजकल जमाने में चीनी डालने लग गए उसकी जगह, तो दही और गुड़ को मिला करके जो चीज बनाई जाती है उसे बोलते हैं श्रीखंड माने शिखरणी, जो शिखरणी छंद है ना अपना, तो श्रीखंड दही और गुड़ ये दो चीजें ऐसी हैं कि इन्हें यदि पीले वैद्य मिला करके तो आधा नशा तो चढ़ ही जाता है, ये मादक हैं, आलस वाली हैं, सो जाएगा नींद आएगी, तो वो शिखरणी छंद भी ऐसे चलता है जैसे कोई आधा सोते सोते मैं बोल रहा हूं, वहां भी स्वामी क्या नहीं ना, तो ये श्रीखंड, तो वो कहते हैं कर्म और आत्मा दोनों मिलकर श्रीखंड बन गया है ना, दोनों मिलकर ही जीव हैं, क्योंकि संपूर्ण कर्मों से भिन्न कोई जीव हमें दिखाई नहीं देता। कोई कहते हैं कि अर्थ क्रिया माने काम होना चाहिए, हमारा प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, प्रयोजनभूत क्रिया करने में समस्त कर्म का संयोग ही जीव है, क्योंकि जिस प्रकार 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न हमें कोई खाट दिखाई नहीं देती, ये तो पलंग मैंने आज की भाषा में लिख दिया है, उसने लोग संस्कृत में क्या लिखा है देखना, खट्टवा लिखा ना वही खाट, पुराने जमाने में खाट बोलते थे, وہ اسی سے آیا ہے. آس لکڑیوں کے علاوہ کھاد کیا ہے؟ چار مچیوا اور دو پاتی دو سیرا ہے. یہی بولتے ہیں سب جگہ، سب سمجھ گئے. آس لکڑیاں ہیں، اس کو مل کر کھاد بنتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کھاد کیا ہے؟ کہ آس لکڑیوں کی ملی ہوئی چیز ہے. کہ آس چیزیں مل مل آ گئی اور آتما بن گیا. پھر آتما الگ سے کوئی نہیں ہے. اس پرکار آٹھ پرکار تو یہاں کہے ہیں، پرنتو آتما کو پر کو آتما ماننے والے دربدھی اتنے ہی نہیں ہیں، اور بھی انیک پرکار کے دربدھی جگت میں ہیں جو پر کو ہی آتما مانتے ہیں، کنتو وہ پرمارتھوادی نہیں ہیں، ستیارتھوادی نہیں ہیں، ستیہ بولنے والے نہیں ہیں. ایسا پرمارتھوادی کہتے ہیں، نشچے نئے کے جانکار کہتے ہیں، سروگ پرماتما کہتے ہیں. یہ سمجھیں گے ہر ایک. اب اپنے مدے کی بات یاد رکھنا ہے. یہ آٹھ یاد رکھو تو بہت بڑھیا، نہیں تو شانتی جی تو جب آئیں گے ان کا نمبر تو آپ کو یاد کرا ہی دیں گے، ہے نا. لیکن سب میں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے بھن جیو دکھائی نہیں دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کی جو یکتی ہے وہ سوانو بھت بھو گرمت ہے. ہر ایک آدمی اپنے انوبھو انوبھو کی بات کرتا ہے. اب وہ انت جیو ہیں، اب وہ ان کو انوبھو میں جو دکھے گا اس کو جیو مان لیں گے. اور یہی تو ان کا اصلی آتما دکھتا نہیں ہے، تو جو دکھتا ہے اس کو وہ جیو مان لیتے ہیں. اس کے اتر میں تواریخویں گاتھا آئی ہے. میں نے اس میں تو پرشن ہی پرشن کھڑا کیا ہے. اب اتر میں یہ چوالیسویں گاتھا ہے جس میں آچار ان سب کا ایک ہی بہت بڑھیا مارمک ترک سے اتر دیتے ہیں. چلو پڑھو گاتھا. آچاری دیو نے کند کند نے ایک ہی بات کہی کہ تم نے جو آج چیزیں بتائی ہیں وہ سب پدگل درب سے بنی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اجانی جیو کو ان پانچ اندریوں والے گیان سے ایک پدگل ہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہ روپ رسگند اسپرس والا ہے اور اندریاں روپ رسگند اسپرس کی گراہی ہیں. اس لیے ان اندریوں سے جو دکھائی دیتا ہے یہ اس کو جیو مان لیتے ہیں. جیسا میں نے بتایا تھا کہ ٹورنمل جی نے وہ کہا نا 78ویں پیج پہ انہوں نے سدھ کیا ہے. وہ اس دن اپن نے بتائی چرچا کی تھی نا کہ بھائی اور تو کچھ دکھائی دیا نہیں ایک اندری کو، اکیلا بس یہ شریر دکھائی دیا، اس نے شریر میں اپنا پن استھاپت کر لیا. تو یہ جتنے اجانی ہیں پانچ دبتو امورتیک ہیں، تو وہ اپنے اندری گیان سے دکھائی دیتے نہیں ہیں. اس کے پاس اندری گیان ہے اور جو اس کا ہی اپیوگ کرتا ہے تو اس سے ایک پدگل ہی دکھائی دیتا ہے، تو ایک کسی نہ کسی پدگل کو جیو مان لیتا ہے. آچاری دیو کہتے ہیں یہ نسکرش نکلا. اب وہ تو سیدھی سچی ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ اے دے سبے بھاوا، یہ سبھی بھاو، بھاو مانے پدارتھ. اب بھاو مانے میں پرنام نہیں، بھاو مانے تمہیں جو ہوتے ہیں نا اچھے برے کھوٹے بھاو، وہ نہیں. بھاو مانے پدارتھ، درب گن پریائے تینوں کو بھاو بولتے ہیں، سمجھے نا. یہ پگل دب پرمان نپنا، یہ پدگل درب سے نشپن ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں پدگل درب سے بنی ہوئی ہیں. और केवल जिन्हें ही भणियां, और ये बात केवल ही भगवान ने कही है। और गुरुदेव की भाषा में अर्थ कहें तो वह सौ इंद्रों की उपस्थिति क्या, केवल जिन्हें भगवान ने ये बात कही है। कहते जीवोति बुच्चंती, तो उसको हम जीव कैसे कह सकते हैं। अकेले आगम के सहारे उन्होंने जवाब दिया कुंद ने, क्योंकि उनके सामने सब नग्न दिगंबर संत बैठे थे पर ऐसे हाथ जोड़ के कि जो कुंद कुंद की वाणी को सर्वज्ञ जैसी वाणी समझते थे, उनने इतनी कह दी कि भगवान ने ऐसा कहा है, तो एक सेकंड में उन्हें स्वीकार हो गई। इसलिए उन्हें इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। क्या लिखा देखो, ए भाव सब खुद गल दरब होगा, एक साथ उन्होंने निपटा दिया, काल का प्रमाण दिया आगम का। देखो सर्वासिद्धि नामक ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा कि कोई बात को सिद्ध करना है तो आगम और युक्ति से सिद्ध करना चाहिए, तो आगम तो ये उन्होंने बता दिया, समझे ना। अब युक्ति तो अमृतचंद्राचार्य टीका में युक्ति को और जोड़ते हैं, अपन टीका में पढ़ेंगे तो उनकी युक्ति सामने आएगी। अभी एक बात समझो मरम की, वे तो इतना ही पर्याप्त समझते थे कि भगवान ने कहा है। आज यदि हम कोई बात कहते हैं तो आप पूछते हो कौन से शास्त्र में लिखा, कौन सी गाथा है, उसका नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, तो हम बता देंगे समय सारे नहीं गाथा, नहीं नहीं हमें लाके दिखाओ, हम आप आंख के सामने पढ़ेंगे। करते हैं ना, हम भी करते हैं, और करना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं गलती कर रहे हैं, लेकिन वो कुंद कुंद आचार्य जंगल में बैठे हैं, उन्हें कहां फुर्सत है ऐसी कि तुम उनका गला पकड़ो के लाओ, पेज नंबर बताओ, किताब लाओ। वे जंगल में कहां से कौन सी किताब लाएंगे, जब तो छपती भी नहीं थी, छपती भी नहीं थी ना, तो वे कहां से लाएंगे। बस उनने कह दी भगवान ने कहा, बस इतना ही पर्याप्त था। उनने कह दी भगवान ने कहा है, बस प्रमाण हो गया, आगम प्रमाण पेश हो गया था बस। आप विचार करो कहां संभव था, उन्हें सब मालूम है, लेकिन वो किताब कहां से लाए। वो अपने साथ एक आध किताब रख सकते हैं, और ऐसे अविश्वास वाले जीव भी नहीं थे, संभव भी नहीं था, जीव भी नहीं थे, उनको प्रवृत्ति में पढ़ते भी नहीं थे। आज तो मालूम ये पीएचडी करनी हो तो बराबर पूरा प्रमाण से आपको लिखना पड़ेगा, नीचे पेज नंबर ए नंबर ए नंबर सब नीचे लिखना पड़ेगा टिप्पणी में, नहीं तो आपको पीएचडी नहीं मिलेगी। इस तो उसका नाम है प्रूफ, बिल्कुल बाकायदे से सिद्ध करो। लेकिन उस वक्त आगम प्रमाण इतना ही कह दिया कि भगवान ने ये बात कही है ना। केवल जिन्हें ही भणियां, केवल ही भगवान ने इन्हें सब पुद्गल कहा है, हम इन्हें जीव कैसे कह सकते हैं। अब देखो गाथा में तो मात्र सर्वज्ञ कथित आगम की बात कही है, पर आचार्य अमृतचंद्र आगम के साथ युक्ति और स्वानुभव की भी बात करते हैं। अब इनकी तीन चीजें हो गई, आगम, युक्ति और स्वानुभव। लिखा ना पहले इनने, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से, तो तीन चीजें तो ले ली ना इनने। अकेला परंपरा गुरु का उपदेश की बात नहीं रही तो वो आगम में आ गई, सर्वज्ञ भगवान से लेकर वहां तक ये आई ना, गुरु परंपरा से तो आई है ना बात, गुरु परंपरा से तो आई है ना बात। पर ये ऐसा नहीं है, जब प्रैक्टिकल में आप उतरेंगे तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हमने अपने माता पिता को जब वो 62 वर्ष के हुए تو سارا دھندا پانی بند کروا کے اور ہم نے کہا کہ ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہو، اب تھوڑا آپ نے ہمیں یہ دھرم پڑھایا ہے تو تھوڑا آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا، اب آپ یہ کرو اور کچھ مت کرو۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جو بھی ہمیں تنخواہ ملتی تھی 150 روپے، جو بھی اس زمانے میں زیادہ نہیں ملتے تھے، اس میں سے 4 آدمی کی جگہ 8 کھائیں گے، لیکن بیٹھ کے شانتی سے دھرم دھیان کرو۔ آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں اس اوستھا کی، استھتی کی، آپ کو بہت اتسوکتی لگے گی۔ اور انہوں نے ایسے ہی پڑھا جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم سے ہمارے ماتا پتا نے، ہماری پتنیوں نے، بچوں نے، ایسے ہی پڑھا، سب کو ایک ساتھ پریکشائیں بھی دیتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر بھی چھوٹا سا بالکل کمرہ ہے، تو وہ ایک پلنگ پہ لیٹے رہتے تھے، اور وہیں چھوٹی سی وہ ٹیبل لگا کر کے، ایک کرسی رکھ کر کے ہم اپنا کام پڑھتے رہتے تھے، کیونکہ اسکول میں پڑھانا، پاٹھشالہ میں پڑھانا، پھر ہر سال کو ایک پریکشا دینا، کوئی نہ کوئی پریکشا ہر سال، ایک سال بھی ایسا باقی نہیں چھوڑا کہ جب پریکشا نہیں دی ہو، 4 بچے ہو گئے تب بھی چالو رہا۔ اس کے بعد ہم نے میٹرک انٹر بی اے ایم اے پی ایچ ڈی سب 4 بچے ہونے کے بعد کیا ہے، تو ہم وہیں پڑھتے، اور وہ بالکل ایسے ہی بغل میں لیٹے رہتے، جگہ زیادہ تھی ہی نہیں، تو لیٹے لیٹے ان کو وکلپ آتا، بھیا ایک پرشن، انہوں نے ایک پرشن چھوڑا، تو ہم کہتے تھے کہ آپ ایک شانتی سے بیٹھ کے لکھتے جاؤ، اور جب ایک ٹائم بیٹھ کر کے شانتی سے ہم سے پوچھ لینا، ہم سب کے اتر آپ کو بتا دیں گے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو بیچ بیچ میں آپ کو ہم نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک منٹ میں آپ کو جواب دے دیں، ایسا ہاں نہ ایسا نہیں ہوتا آپ نے کیا، اتنے میں تو تم جواب دیتے تھے، اپدیش تو دو گے لیکن جواب نہیں دو گے، وہ بولتے تھے کیا تم اپدیش دو گے جواب نہیں دو گے، کیا کرے بولو، ابھی ہم ٹھیک ہے، تو ہم کہتے گومر صاحب کے فضل میں دیکھو اس میں مل جائے گا اس کا جواب۔ پھر ہم نے ایسا جواب دینا شروع کیا کہ اس میں دیکھو اس میں دیکھو، تو کیا ابھی ہم کون اٹھے تھے، وہ بھی ہماری عمر کے لیتے سے کھڑے ہونا، صرف کتاب اٹھانا، اسے دیکھنا اتنا آسان تو نہیں تھا نا، تو بھیا تمہیں یاد ہے نا موقع، تو تم بتا نہیں سکتے ہو، ہم اٹھیں بس دیکھیں گھنٹہ بھر لگے، ملے نہیں ملے، کیوں کیا کریں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمبھو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آدمی آپ کو 24 گھنٹہ پڑھانے کے لیے تیار ہے، آپ 10 منٹ 15 منٹ 8 گھنٹہ کوئی پرشن کرو، اس کا جواب مل سکتا ہے 24 گھنٹے میں، لیکن باقی تو کام ہے نا اب ہر ایک کو، پر ہم تو 24 گھنٹہ کام کرنے والے لوگ ہیں، رات میں بس 12 کے پہلے سوتے نہیں ہیں، 5 کے بعد جگ جاتے ہیں، اور بس ہمارا صبح سے شروع ہو جاتی ہے سب بات، ابھی بھی ابھی 77 برس کی عمر میں بھی ابھی ہمارا وہی کرم چل رہا ہے جو زندگی کی عادت پڑی ہے۔ تو میرے کہنے کا اثر یہ ہے کہ بس ہم نے بتا دیا نا تم کو، یہ اب پروف چاہیے تو تمہیں اٹھا کے دیکھنا پڑے گا، ہے نا۔ آچاریہ مہاراج جنگل میں اپنے آتما کا دھیان کریں، 6 گھڑی ساما ایک صبح، 6 گھڑی دوپہر میں، 6 گھڑی شام کو، اب سمے سال لکھ رہے، اب بیچ میں انہوں نے بات کہی آپ کو گھنٹہ 8 گھنٹہ، تو انہوں نے کہہ دی کیلو بھگوان نے ایسا کہا ہے، جھگڑا کرم گئی پتگل میں ہے، ہلے جی آتما نہیں ہے، نبھ جاؤ، کہاں کہا، کون سی پیج کہا، تو دیکھتے رہنا پیج، تم جو دیکھنا ہو دیکھ رہے۔ یہ کند کند کی پوزیشن تو یہ تھی۔ امرتند کی جگہ آتے آتے لوگ ترکواز ہو گئے تھے، اس کے بعد سمنت بھدر آئے، اکلنک آئے، اور بڑے بڑے آچار آئے جن نے بہت ترک بترک سے سب چیزیں سماج کے سامنے رکھی۔ تو جو امرتند کہتے ہیں پڑھو، دیکھو مارنے کی بات ہے، وشو کے یہی ہے نا، صحیح جگہ پڑھ رہا ہوں میں، وشو کے سمست پدارتھوں کو ساکشات دیکھنے والے بیتراگی سروگ ارہنت پرماتما کے دوارا یہ سمست ادبسانادک بھاو پدگل دیو کے پرنام میں کہے گئے ہیں۔ یہ گاتھا کا ارتھ ہے۔ अतः चैतन्य स्वभाव में जीव द्रव्य होने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य को चैतन्य स्वभाव से शून्य उद्गल द्रव्य से भिन्न कहा गया है। इसलिए जो इन अद्वसानादि को जीव कहते हैं वे वस्तुतः परमार्थवादी नहीं हैं, क्योंकि उनका पक्ष आगम और युक्ति और स्वानुभव से बाधित है, माने आगम से नहीं ठहरता है और युक्ति से भी नहीं ठहरता है और अनुभव के सामने भी नहीं ठहरता है। देखो वे जीव नहीं है, ऐसा जो सर्वज्ञ का वचन यह वह तो आगम है, खत्म। देखो उन्होंने कही ना सर्वज्ञ ने, कहाँ कही के ऊपर की गाथा में कही ना, ऐसा जो सर्वज्ञ का वचन है वह तो आगम है और यह निम्नांकित स्वानुभव गर्भित युक्ति है। अब युक्ति को अनुभव को युक्ति को उन्हें मिला दिया, कहते हमारी जो युक्ति है वो स्वानुभव गर्भित है। अब क्या है स्वानुभव गर्भित, तो उन्होंने जो ये बात कही थी ना कि ये हमें इनके अलावा कोई आत्मा नहीं दिखता, कर्मों के अलावा, शरीर के अलावा, राग द्वेष मोह के परिणामों के अलावा, अद्वसानों के अलावा, इसलिए ये जीव है, ये युक्ति दी थी ना। तो आचार्य क्या कहते हैं, हमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा। तो ये स्वानुभव गर्भित युक्ति है, तुम कहते हमें दिखाई नहीं देता इसलिए वो यही जीव है, और हम कहते हमें साफ साफ दिखाई दे रहा देह से भिन्न भगवान आत्मा, इसलिए हम कहते हैं कि ये जीव नहीं है। तो स्वानुभव गर्भित युक्ति से उनने रखी थी बात, उन्हें स्वानुभव गर्भित युक्ति से ही काटी। अब आप कहोगे कि दोनों से बराबरी पे ही छूट गए ना, कि जैसा उनने किया ऐसा इनने किया, कि नहीं फर्क है। मैं आपसे पूछता हूं, आप सब विद्यार्थी यहां बैठे हो, अभी यहां पर एक 6 फोटो लगे हैं, लगे हैं ना 6 फोटो। अब कोई कहे कि हमें दिखाई नहीं देते हैं इसलिए नहीं लगे, एक युक्ति तो ये है, और दूसरा एक है कि हमें दिखाई दे रहे इसलिए लगे हैं, दूसरी युक्ति ये है, बोलो इनमें से कौन प्रमाणिक मानी जाएगी। ये जो पहली युक्ति है कि हमें दिखाई नहीं देती, ये तो उसको अंधा सिद्ध करती है, ये नहीं है ये सिद्ध नहीं करती है, क्योंकि कोई चीज नहीं हो और दिखाई दे जाए ऐसा नहीं होता, और हो दिखाई ना दे ऐसा होता है। तो जो आदमी कहता हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है तो उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती, लेकिन जो ये कहता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कि सूरज को कह दे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहेगा हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, यही तो कहे ना, तो तुम्हारी कैसे माने, हमारी क्यों नहीं माने, इन दोनों में से एक किसकी मानी जाए, तो वजनदार बात किसकी है, वजनदार बात तो उसकी ही होगी ना जो ये कहता हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा अंधापन तो होता है जगत में कि वस्तु हो दिखाई नहीं दे, ऐसा अंधापन नहीं होता कि नहीं हो वो दिखाई दे जाए, समझ गए ना। तो इसलिए ये युक्ति वजनदार है, कौन सी, कि हमें तो देह से भिन्न भगवान आत्मा साफ दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में ये युक्ति भी स्वानुभव गर्भित है। हमारी बहुत सी युक्तियां आगम पे आधार रखती हैं और बहुत सी अनुभव पे आधार रखती हैं, इसीलिए तो सामने वाले से हम नहीं टिकते, जिनको हमारे धर्म में श्रद्धा नहीं है उनके सामने नहीं टिकेंगे हम, इसलिए हम उलझते भी नहीं, क्यों कि वो हमारी स्वानुभव गर्भित युक्ति को भी नहीं मानेगा। तो हम ये भी तो कहते हैं ना कि गोमर साहब ने लिखा है, ये भी युक्ति देते हैं, ये बात सत्य है, तो आगम प्रमाण भी है वो, और उसे हम युक्ति के रूप में भी पेश करते हैं कि पहले आप ये कहा है फलानी जगह ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है, अकेला वो आगम ही नहीं है, ख्याल में आई ना, तो वो सामने वाला आगम को मानता नहीं है और तुम्हारे अनुभव को भी नहीं मानेगा। तुम कहते हमने हाथ चूके देखा अग्नि गर्म है, वो नहीं करेगा, बोलेगा मैं तो नहीं, मैं नहीं मानता, क्या करोगे कि तुम सही बोल रहे हो, तुम कहोगे हमारे बुजुर्गों ने कही थी फलां किताब में लिखी है अग्नि गर्म है, वो कहते मैं नहीं मानता, इसलिए क्योंकि तू नहीं मानते ना, तो हमें तुमसे बात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि जो कुछ नहीं मानता है अब उससे हम कोई बात नहीं करना चाहते। हमारा समय शक्ति खराब होगी और क्या होगा। शांति से तुम्हें समझना हो तो समझो। एक सच्ची घटना है, करीब 40 साल पुरानी की होगी, और 43 साल भी हो गए हों तो नहीं। ये मेरे साले साहब हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी, नाम भी बता दूं है ना। वे मेरे पास आए छुट्टी लेके 8 दिन की, गवर्नमेंट उस सर्विस में थी बहुत अच्छी में, तो आए। उन्होंने कहा मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है, समझना है। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। अब आए बैठे, चर्चा शुरू हुई, तो मैंने कहा भाई आत्मा ही आत्मा की बात चली, हम नहीं मानते। कुंड ने लिखा हम नहीं मानते, कुंड कुंड को नहीं, हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानते। फिर तुम क्या मानते हो? मैं कहा देखो, जो आचार्यों को नहीं मानना तुम्हें, किसी टीकाकार को नहीं मानना, एक भला आचार्य को नहीं मानते बच्चा ले, कि किसी को ही नहीं मानना, तो हमसे तुमसे चर्चा नहीं हो सकती। तुम ऐसा करो कि जयपुर बहुत अच्छा शहर है, टूरिस्ट प्लेस है, आराम से यहाँ पर सुबह शाम अपनी बहन की हाथ की बनी रोटियां खाओ और दिन भर घूमो, बहुत अच्छा रहेगा है। और जब तुम्हारे मन में ये आवे कि अब तुम आगम को मानने को तैयार हो, युक्तियों को मानने को तैयार हो, तो हमसे बोलना, तो हम सोचेंगे तुमसे बात करना। तो मैं उठ के वहां से उठ के ऑफिस में आ गया और अपने काम में लग गया। क्या हुआ होगा? घंटे दो घंटे बाद आ गए, नहीं नहीं साहब माफ कर दो, माफ कर दो, ऐसा है नहीं। अरे भाई तो हमारे सामने कुंद कुंद को नकारते जा रहे, इसको नकार, सब नकारते जा रहे। कहते कोई अजय नहीं आपसे बात कर रहा है, आप ऐसा मान के चलो। मैंने कहा हमें अजय नहीं से बात करना ही नहीं है, उन्हें समझाने का भाव ही नहीं आता। हम तो तुमको जैनी समझते, इसलिए हमें समझाने का भाव आया था। क्या अब तुम रिश्तेदार हो, रिश्तेदारी निभाओ अच्छी तरीके से। लेकिन ये तो यहां समझना पड़ेगा बेटा, तो शिष्य बन के ही समझना पड़ेगा, हाथ जोड़ के नीचे बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्या समझे? ऐसे नहीं होती। एक और बहुत बड़े पंडित थे जैन समाज में, बहुत बड़े, बस मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो वो हम अशोक नगर में थे, वहां आए दादा। अब उनने हमारा नाम सुना होगा तो बस वो गद्दी पे बैठ गए, प्रवचन कर रहे और पूछे प्रश्न, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, और हम चुप बैठे नीचे। जब उन्हें बहुत ज्यादा उकसाया तो मैंने कहा कि हमको जवाब देने की आदत ऐसी गर्दन करके है, ऐसी गर्दन करके नहीं है। क्या समझ में आया? क्यों हम नीचे बैठे हैं, तुम गद्दी पे बैठे हो, हमसे जब प्रश्न कर रहे हो जवाब दो, हम जवाब देने में एक मिनट भी नहीं बोल पाएंगे, दो वाक्य भी नहीं बोलेंगे और तुम फिर बोलना शुरू कर दोगे। हम ज्यादा बोलेंगे तो जनता हमें पकड़ लेगी कि नहीं निजाव प्रतन होने दो शांति से, और तुमको घंटों बोलना है। फिर यदि हमसे जवाब चाहिए तो आओ आप नीचे बिरा दो, हमें वहां बैठने दो, फिर पूछो, फिर हम जवाब देते हैं। सोच नहीं सकते कितना बड़ा पंडित था, उस लोग तो कोई सोच ही नहीं सकता था। क्या फिर अकेले में पूछेगा तो उसे नाम भी बता दूंगा है? हमारे मुख से अहरी साहब आपने आप जवाब क्यों नहीं दिया, अब लोग समझेंगे कि आपको जवाब नहीं, समझने दो ना। चर्चा हमें चर्चा उनसे करनी हो तो बराबरी पर होगी है, उन्हें हमसे समझना है तो हम ऊपर बैठेंगे, उन्हें नीचे बैठना पड़ेगा। हमें उनसे समझना हो तो वे ऊपर बैठेंगे, हमने जो हमें कुछ समझना नहीं है, हमें कोई प्रश्न नहीं है उनसे, हम शांति से वो समझा रहे, वो सुन रहे। ऐसे तत्व का निर्णय नहीं हो सकता कि तुम हमसे बताओ, बोलो बोलो बोलो, और लगे फिर तुम बराबर एक घंटे उसकी धुनाई करो, जो हम बोले उसकी धुनाई करो, हमें पूरा बोलने ही नहीं दो, اور پھر جب ہار گئے ہار گئے, ارے ہمیں کون سا ہار گئے, چلو ہار گئے مان لیا ہم نے ہار گئے, چلو تم تعلق کرو. دیکھو کتنی ہیں بے وقتیاں, دیکھو پڑھتا جاؤں گا میں. نئی سرگی راگ دیش سے ملن ادبسان جیو نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے تھے جیو, کیونکہ جس پرکار کالے پن سے, وہ کیا کہتا تھا, کوئلا سے کالا پن الگ نہیں دکھتا ہے نا, یہاں کہتے کالے پن سے بھن سورن سبھی کو دکھائی دیتا ہے. اسی پرکار ادبسان سے بھن انچت سواب روپ جیو بھید وگیانیوں دوارا سویم اپلبدھ مان ہے, اکیلے مجھ کو ہی نہیں سارے بھید وگیانیوں کو یہ جیو انوبھو میں آتا ہے, ارتھاتو بے سویم اس کا پرتیک انوبھو کرتے ہیں, یہ انوبھو سے گربھت اکتی ہے. اب یہ بھی آٹھ دفعہ دہرائیں گے اسے. امبے چند کی ایک خاص بات ہے, بالکل ایک پنکتی سے ایک لائن سے وہ بات کرتے ہیں. انادی جس کا پورو ابھیب ہے, وہ پیچھے میں یہی تھا نا, اور انت جس کا بھوشیہ ابھیب ہے, ایسی ایک سنسرن روپ کریا کے روپ میں کیڑا کرتا ہوا کرم بھی جیو نہیں ہے. اس نے کہا تھا کرم ہی جیو ہے, انہیں کرم بھی جیو نہیں, کیونکہ کرم سے بھن ان چیتنیہ سوبھاو روپ جیو بھید وگیانیوں دوارا سویم اپلبدھ مان ہے, ارتھات بے سویم اس کا پرتیکش انوبھو کرتے ہیں. آٹھ بار لکھا ہے, تیور مند انوبھو سے بھید روپ ہوتے ہوئے درنت راگ روپ رس سے بھرے ہوئے ادبسانوں کی سنتتی بھی جیو نہیں ہے, کیونکہ اس سنتتی سے ان پرتھک چیتنیہ سوبھاو بھاو روپ جیو بھید وگیانیوں دوارا سویم اپلبدھ مان ہے, ارتھاد وہ سویم اس کا پرتیکش انوبھو کرتے ہیں. نئی پرانی اوستادک بھید سے پرورتمان نو کرم جیو نہیں ہے, کیونکہ شریر سے ان پرتھک چیتنیہ سوبھاو روپ جیو بھید وگیانیوں دوارا سویم اپلبدھ مان ہے, ارتھاد وہ سویم اس کا پرتیکش انوبھو کرتے ہیں. سمست جگت کو پن پاپ روپ سے ویاپت کرتا ہوا کرم پرکاش بھی جیو نہیں ہے, کیونکہ سواسو بھاو سے ان پرتھک چیتنیہ سوبھاو روپ جیو بھید وگیانیوں کے دوارا سویم اپلبدھ مان ہے, ارتھات وہ سویم اس کا پرتیکش انوبھو کرتے ہیں. ساتا اساتا روپ سے ویاپت سمست تیورتا مندتا روپ گنوں کے دوارا بھید روپ ہونے والا کرم کا انوبھو بھی جیو نہیں ہے, کیونکہ سکھ دکھ سے بھن ان چیتنیہ سوبھاو روپ جیو بھید وگیانیوں کے دوارا سویم اپلبدھ مان ہے, ارتھات وہ سویم اس کا پرتیکش انوبھو کرتے ہیں. شری کھنڈ کی بھانتی ابھی آتمک روپ سے ملے ہوئے آتما اور کرم دونوں مل کر بھی جیو نہیں ہے, کیونکہ سمپورن کرموں سے بھن ان چیتنیہ سوبھاو روپ جیو بھید وگیانیوں دوارا سویم اپلبدھ مان ہے, ارتھات وہ سویم اس کا پرتیکش انوبھو کرتے ہیں نا. ان چیتنیہ سوروپ جیو, سب پوری پنکتی برابر ریپیٹ ہو رہی ہے. اور یہ انتم ارتھ کریا سے سمرتھ کرم کے سنیوگ بھی جیو نہیں ہے, کیونکہ آٹھ لکڑیوں کے سنیوگ سے بنے پلنگ سے بھن پلنگ پر سونے والے پرس کی بھانتی کرم سنیوگ سے بھن ان چیتنیہ سوبھاوی جیو بھید وگیانیوں کے دوارا سویم اپلبدھ مان ہے, ارتھات وہ سویم اس کا پرتیکش انوبھو کرتے ہیں. اس پرکار آٹھ پرکار کی غلط مانیتاؤں کا نراکرن کی بات یہاں سوانوبھو گربھت یکتی سے کہی ہے. اسی پرکار انیہ بھی کوئی مانیتائیں ہوں تو ان کا نراکرن بھی اسی پرکار کیا جا سکتا ہے, کیا جانا چاہیے. اب دیکھو اس سارا اتنا لمبا پتھر نہ پڑھ لیا اپن نے, اوپر سنسکرت میں اتنا لکھا ہندی میں لکھا, اب میں نے چھ لائن میں سارے کا پورا تو پرانی گاتھائیں بھی دے پانچ اور ان کی ٹیکا اور یہ گاتھائیں ان کی ٹیکا سب کو یہ چھ لائنوں میں بانٹا ہے. دیکھو بس یہ چھ لائنیں تم یاد کر لو تو پوری یہ آٹھ دس پیج پندرہ پیج تمہیں یاد ہو جائیں گے, اور کیسے کسی چیز کی پریسی بنائی جاتی ہے. پریسی جانتے ہیں, انگریزی میں پریسی کہتے ہیں, تم لوگ بناتے ہو گے نا, وہ اس کی ودھی ہے. تو دھیان سے سننا, अपने पास समय नहीं है ज्यादा। उक्त समस्त विषय वस्तु को हम एक वाक्य में इस प्रकार समेट सकते हैं, ये पांच लाइन का एक वाक्य है। यहाँ कोमा मिलेगा, सेमी कॉलन मिलेगा, फुल स्टॉप नहीं मिलेगा। जब फुल स्टॉप खत्म होगा तो वो वाक्य खत्म होगा, समझे ना। एक वाक्य है, स्वयं उत्पन्न हुए राग देश रूप अध्यवसान जीव नहीं है, अनादि अनंत संसरण रूप क्रिया में कीड़ा करता हुआ कर्म जीव नहीं है, राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति जीव नहीं है, नौकर्म रूप शरीर जीव नहीं है, सुभाषुभ भाव रूप कर्म विपाक जीव नहीं है, तीव्रता मंदता और सुख दुख रूप कर्म का अनुभव जीव नहीं है, आत्मा और कर्म की मिलावट जीव नहीं है, और अर्थकृतियां करने में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है, क्योंकि इन सबसे भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। क्या किया वो, तो आठ दफे जो था उसे एक दफे लिखा, वे आठों मान्यताएं इकट्ठी लिखनी कोमा लगाकर। छावरा जी समझ में आया ना क्या है स्टाइल दादा, क्योंकि उन्होंने भी आठ दफे दोहराया था ना, तो आप कहोगे ये अच्छा है कि वो दोहराया था वो अच्छा है, क्यों हमारे पास बहुत समय है, क्या करना है, दूसरा काम क्या है, आज का 16 दफे दोहराओ ना। अध्यात्म रिपीटिशन दोष नहीं माना जाता, समझे ना। अब तुमको बोझा लगता हो आठ कैसे याद करें, तो ये संक्षेप में हमने बता दिया, पूरी बात आ गई इसमें, उन गाथाओं की, उत्तिका की, इस बीच की और सबकी, है ना। अब मुझे नहीं पता इस वाक्य को याद कराने के लिए अन्ना जी आपको कितना पैसे का इनाम देंगे, यानी आप कितने पैसे में याद करोगे मुझे पता नहीं है है ना। अतः अन्य विकल्पों से विराम लेकर सर्वज्ञ कथित और भेद विज्ञानियों द्वारा अनुभूत आत्मा को जानकर आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए। ये इस वाक्य में क्या है मालूम आपको, सर्वज्ञ कथित ऐसा कहके आगम की बात की है, और भेद विज्ञानियों द्वारा अनुभूत इससे अनुभव की बात की है, युक्ति की बात की है, ऐसे आत्मा को जानकर आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए, ये इसका निष्कर्ष है। इच्छा गाथाएं होंगी, मैंने हो गया समय, एक दिन सिर्फ इस कलश के लिए बताया है, जो इसके बाद इन छह गाथाओं के बाद और टीका के लिए के बाद आचार्य अमृतचंद जी लिखते हैं, जो है ना कलश के बाद, एक ऊपर कलश है ना मालनी, अभी अकेला पढ़ लो तो कल अर्थ करेंगे इसे पढ़। बात करेंगे इसकी।